जयमा, रूपांतरण की कठिनाइयां। अब सोचिए मोक्ष में क्या है कि आप एक फ्री हो गए, अंदर में यू हैव गॉन इन टू फ्रीडम। तब क्या हुआ, कर्म के बंधन से आप मुक्त हो गए। अब रूपांतरण में क्या है कि आप संसार में रह रहे हो, ना केवल अंदर, आप बाहर भी, आपका देह भी मुक्त है कर्म के बंधन से। तो इससे क्या होगा, जो कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे के लिंक में, कर्म बंधन केवल एक व्यक्ति पर नहीं होता, इसने सारे संसार को एक सूत्र में बांधा हुआ है। आप ये तो बुद्धिस्ट का थॉट तो यही है, अगर हम ये कहें कि नहीं मेरे कर्मों से मुझे मुक्ति मिल जाए, तो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा तो ये भी एक समस्या होती है। तो यहां पर कर्म बंधन क्या है उसका हल्का सा एक ग्लिम्स है। और सावित्री इससे मुक्ति क्यों मांग रही है और किसके लिए मांग रही है और ये है क्या, किस तरह की मुक्ति मांग रही है कर्म बंधन से। पेज 12, ऑल्टर्ड मस्ट बी नेचर्स हार्श इकोनॉमी। कर्म को किस तरह से बताया गया, एक बैलेंस क्रिएट करता है, लेकिन शेरविंद इसको हार्श इकोनॉमी कह रहे हैं। क्यों हार्श इकोनॉमी इस तरह से है कि आप देखिए, हम लोग सुनते भी हैं कई बार कि अच्छे भले घर में अच्छा भला बच्चा, अच्छा था, अच्छा भला बड़ा हो रहा था, अचानक उसको एक बीमारी हो गई जो उसके जीन्स में आई, हेरिडिटी। उसका कोई दोष नहीं है, कम से कम इस जीवन में तो अच्छा, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, बच्चा भी अच्छा है, लेकिन वो बीमारी उसको समाप्त कर देती है फिजिकली। अब वो और बात है कि अंदर में आपका चलता है इवोल्यूशन, लेकिन बाहर से कोई भी अकाल मृत्यु, हार्श इकोनॉमी। शरीर के अंदर दोष है तो है, नेचर ये नहीं बोलती है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आपने बहुत रेगुलर इनकम टैक्स भरा था तो कोर्ट में आपका केस आप जीतोगे ही जीतोगे। नन ऑफ दिस अप्लाइज। अगर हम संसार को केवल खुली आंखों से देखें, हम उसको जस्टिफाई करते रहते हैं कि पूर्व जन्म में आपने किया होगा, लेकिन इस जन्म में तो जो स्पष्ट दिखाई देता है कि एक अच्छा व्यक्ति जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, वो कोर्ट में एक दुर्दांत राजनीतिक व्यक्ति से हार जाता है जो गलत उपाय से इस चीज को कर रहा है। तो ये बाहर से जब हम देखते हैं तो बहुत विचित्र लगता है। यहां हार्श इकोनॉमी विशेष रूप से जड़ तत्व के बंधन को कहा गया, ये सबसे कठोर है। आप देखिए अच्छे से अच्छे, अब स्वामी विवेकानंद 39 की एज में उनका शरीर पूरा हो जाना, चाहे ठीक है उनकी अपनी इच्छा मृत्यु हम कह लें, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि वो और अगर कल्पना करें 50 साल रहते तो क्या कितना फर्क पड़ता। श्री रामकृष्ण परमहंस 58 में, ठीक है डिसाइपल्स का उन्होंने कहते हैं पाप अपने ऊपर लिया, परंतु अगर आप देखो तो वे जिनकी वाणी से अमृत बरसता था, उनकी वाणी में थ्रोट कैंसर और उससे कितनी पीड़ा से गुजरे हैं वो, अगर आप पढ़ें तो। और वो कहते हैं माँ को बार बार, उनको पीड़ा हो रही, कष्ट हो रहा है, अगर आप उनके पढ़ेंगे ना टुवर्ड दी लेटर पार्ट, और लोग उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनको प्रेम से बंधे। इट इज वेरी टचिंग इफ यू रीड। सी अरविंद को देखिए, 2 दिसंबर प्रोग्राम, सारा उस समय उनकी जो अवस्था थी, 24 नवंबर को दर्शन, नहीं जो बच्चे हैं जो आए हैं उन सबको, ऑलरेडी वो निर्णय ले चुके थे, वो अंदर में जो कुछ हो रहा था, शरीर एकदम सब कुछ करने के बावजूद, इसलिए वो कहते हैं ना माँ से योर बॉडी इज मोर प्रिपेयर्ड। तो ये हार्श इकोनॉमी, खासकर फिजिकल डेथ, जिसके बारे में बड़े से बड़े योगी कह गए ये तो जातस्य ध्रुवस्य मृत्यु, आप इसको नहीं बदल सकते। आप अच्छे होंगे बहुत अच्छे होंगे, बुरे होंगे बहुत बुरे होंगे, लेकिन ये संतुलन बनाए रखने का ये कौन सा तरीका है। हार्श इकोनॉमी, कुछ ऐसे है कि आपके बैंक में किसी ने करोड़ों रुपए मेहनत से कमा के जमा किए, किसी ने 100 रुपए जमा किए और अचानक बैंक ने कहा मेरा दिवालिया हो गया सबको, लेकिन हम 1000-1000 रुपए दे देंगे। हार्श इकोनॉमी, बैलेंस, संतुलन बनाने का। एक्विटेंस शी मस्ट विन फ्रॉम हर पास्ट बॉन्ड। अब यहां पास्ट बॉन्ड की दो दृष्टि, हम लोग कहते हैं ना पूर्व जन्म के कर्म, तो पास्ट बॉन्ड वे जो चीजें हमारी प्रकृति के अंदर हैबिट्स टेंडेंसीज, ये इस कैंटो के अंत में आएगा, वही नियम बन जाती हैं। एक बार आप यूथ में एक जिसको हम कहते हैं बाहर से गलती, आपको कोई आदत लग गई, अब आप पूरे जीवन उससे स्ट्रगल कर रहे हो कि ये आदत आपको पता चल गया, आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो आदत कहां बैठ गई, जड़ तत्व में बैठ गई। होता है ना ये अनुभव, प्रायः सभी लोग करते हैं। तो ये चीज जो है इसको पास्ट बॉन्ड, ये केवल ऐसे नहीं है अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही है यहां पर, पास्ट जो भी हमारा पास्ट था वो हमको जकड़ के रखता है, वो अच्छा वाला भी बुरा वाला भी, जो भी हम अच्छा बुरा हमारी समझ है, लेकिन वो हमको पकड़ लेता है। एक्विटेंस शी मस्ट विन फ्रॉम हर पास्ट बॉन्ड एन ओल्ड अकाउंट ऑफ सफरिंग एग्जॉस्ट, ओल्ड अकाउंट ऑफ सफरिंग। अगेन इसको ट्रेडिशनल थॉट में हम क्या देखेंगे कि हमारी कर्म बुरा कर्म किया तो सफरिंग, यहां ये भाव नहीं है, ये अंत में आएगा, जैसी बात की पास्ट में। अब एक थोड़ा सेमी यूमरस चीज है, विवाह हुआ उसके बाद अब आपको सफरिंग हो रही है, वाइफ को सफरिंग हो रही है, ज्यादातर वाइफ सफर करती हैं। अब वो क्या करे, ओल्ड अकाउंट ऑफ सफरिंग आपने साइन कर दिया, साइन कर दिया, अब आप कितना भी अपने अंदर चेंज हो रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपको सफरिंग से जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस तारीख को फला फला दिन 40 साल पूर्व आपने विवाह का सिग्नेचर किया था, अब आपको पता भी नहीं कि ये किस कर्मों के कारण। तो ओल्ड अकाउंट ऑफ सफरिंग, कब तक ये पीड़ा रहेगी? अब आप इस पीड़ा का विचित्र है, आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे पीड़ा हो रही है भगवान मुझे इससे मुक्त कर दो या इनसे मुक्त कर दो, आप नहीं कह सकते हो, और आपको हो रही है लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। ओल्ड अकाउंट ऑफ सफरिंग एग्जॉस्ट, ये क्यों ये सफरिंग होनी होती है, यहां माता जी बाद में बताएंगे शेयर में, क्योंकि ये लाइफ इम्परफेक्ट है, हम जुड़ जाते हैं उन चीजों से, उन लोगों से, और बुरी तरह अटैच हो जाते हैं जो बाद में पीड़ा का कारण बनते हैं। लेकिन जब पीड़ा का कारण बनते हैं तब हम ये नहीं कह सकते कि आपको हमने काट दिया अब हम आगे जा रहे हैं, नहीं कह सकते, यही ओल्ड अकाउंट ऑफ सफरिंग। स्ट्राइक आउट फ्रॉम टाइम द सोल्स लॉन्ग कंपाउंड डेट, ना जाने कितने जन्मों में वो एक्यूमुलेट होता रहता है, बढ़ता रहता है, वृत्तियां प्रवृत्तियां टेंडेंसीज वो स्टिक करके आती रहती है हमारे साथ। एंड द हैवी सर्विट्यूड्स ऑफ द कार्मिक गॉड्स, द स्लो रिवेंज ऑफ अनफॉरगिविंग लॉ एंड द डीप नीड ऑफ यूनिवर्सल पेन एंड हार्ड सेक्रीफाइस एंड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस, ये है जीवन का रियल, लाइक शेरविन स्पिरिचुअल रियलिज्म। देखिए एक एक चीज को इसमें, दिस हैवी सर्विट्यूड्स ऑफ द कार्मिक गॉड्स, ये जो शक्तियां जो कर्म का ताना बाना जिसकी बात हुई है, आप उनके पास जाकर के इस लाइक आप पार्डन मांगने के लिए गए हो, प्रेसिडेंट कहता है नहीं मैं बदल गया हूं, अब मैं वो व्यक्ति नहीं रहा, इट डजंट मैटर तुमने तब यह किया था। ये मांडव्य ऋषि की यही तो कहानी है, कहानी में संकेत यही है कि हैवी सर्विट्यूड उनके खाते में लिखा है, तो वो आपके खाते में लिखा है, हम इसको रिजिडली फॉलो करेंगे, आप बदल गए हो अच्छे हो गए हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो लिखा है हम उसको एग्जैक्टली आपको देंगे। द स्लो रिवेंज ऑफ अनफॉरगिविंग लॉ. इस लॉ को, ये यम का विधान है. और माता जी बार बार कहती हैं, आई हैव कम टू चेंज द लॉ. ये विधान जो है मर्तलोक में जो ऑपरेट है इग्नोरेंस में, ये यम का विधान है, सूर्य का विधान नहीं है. ये दो विधान है, इसकी बात हुई है कई बार. ये नहीं कि डिवाइन वांट्स अस टू गो थ्रू सफरिंग पेन. ये इस अंधकार के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, अनफॉरगिविंग लॉ. लोग कई बार पूछते हैं कि टीचर, बच्चे ने एक प्रश्न किया था, 10 साल के बच्चे ने, कि मेरे जो टीचर हैं वो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, सबके सामने वो आपको मिसबिहेव करते हैं. वो बच्चा स्कूल में है, आप स्कूल नहीं ऐसे बदल सकते, वहाँ दूसरा टीचर मिल जाएगा इससे भी बुरा. तो यू हैव टू गो थ्रू इट. ऑफकोर्स आप समझाते हो कि ये भी समझ लो कि ये भी तुम्हारी शिक्षा का एक हिस्सा है, कैसे डील करोगे, ऐसे लोग रियल लाइफ में भी मिलेंगे. तो अनफॉरगिविंग लॉ एंड द डीप नीड ऑफ यूनिवर्सल पेन, क्योंकि हम अज्ञान से इसके बिना अचित अंधकार से जागते नहीं हैं, एंड हार्ड सेक्रीफाइस एंड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस. अंततः राम जी की विजय हुई, अंततः. पर देखिए कितने कष्ट दोनों ने, श्री राम ने और सीता माता ने, इसके लिए उठाए. अंततः पांडवों की विजय हुई, लेकिन क्या नहीं खोया उन्होंने उसमें. यहां तक कि वो खुद इतने विक्षुब्ध हो गए कि वो चले गए वन में, कहते हम नहीं राज्य, इसको, इस राज्य को हम कैसे भोगेंगे. तो उस पीड़ा से निदान पाने के लिए वो जो युत्सु राजा बन जाता है और वो जाते हैं यात्रा करने. समय के पहले वो इवन हिमालय चले, क्योंकि वो उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे. हार्ड सेक्रीफाइस एंड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस. श्री अरविंद ये सब जानते हैं जिससे हम लोग गुजरते हैं. आप किसी भी तरह इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. लोग जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण ने कराया ये बताने के लिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए. सोचिए कोई मॉन्स्टर ऐसा करेगा कि आपको रियल लाइफ में 18 क्षणी लोगों को मार डालेगा अगर उनके बस में है, और ये कहेगा कि नहीं मैं ये सिखाना चाहता था. देखो इससे कोई माँ ऐसा करेगी, बच्चे को ढकेल देगी, गिरोगे हड्डी टूट जाएगी, मैं बताना चाह रही थी कि गिरना नहीं चाहिए. इट इज नॉट द गॉड. माता जी को जब डेथ कहती है ये बात, ये ऐसा भगवान का विधान है, वो कहती है ये तुम्हारा भगवान होगा, मेरा भगवान नहीं है. मेरा भगवान तो प्रेम में है, जो स्वयं अपना परित्याग कर देता है सृष्टि के कल्याण हेतु. तो यहां पर एंड हार्ड सेक्रीफाइस एंड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस. Out of a timeless barrier she must break, penetrate with her thinking depths the void's monstrous hush, look into the lonely eyes of immortal death, and with her nude spirit measure the infinite's night. ये जो विधान देखिए, सारा ये विधान किसका है? मृत्यु का विधान है, यम का विधान है. भगवान नहीं चाहते हैं ये, लेकिन उन्होंने इसको सैंक्शन दिया हुआ है. यहां पर वो बात आती है कि पेन को क्यों सैंक्शन मिला हुआ है. पर्पस केवल ये है कि जाग जाए, लेकिन आप जाग भी जाते हो, आपके अंदर अभिप्सा आ गई, समर्पण भी कर रहे हो, फिर भी आपको, ऑफकोर्स भगवान बचाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखो श्री कृष्ण तो साक्षात खड़े हैं पांडवों के साथ. फिर भी क्योंकि यम का विधान. और ऐसे ऐसे लोग हैं जो जस्टिफाई करते हैं. द्रौपदी हंस दी थी इसलिए, जस्टिफाइंग दुर्योधन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चूंकि ये बात हुई है महाभारत में, ये उल्लेख ही नहीं है व्यास की महाभारत में. द्रौपदी थी ही नहीं वहां पे जब इंद्रप्रस्थ में ये लोग गिरते हैं. दूसरा आप सोचिए कि अगर तुम्हारी भाभी हंस थी ठिठोली में, मजाक में, तो आप युद्ध को, विनाश को जस्टिफाई करोगे? अब ऐसी मानसिकता है लोगों के अंदर, मुझे तो उनकी मानसिकता पर आश्चर्य होता है कि आप किस हद तक जस्टिफाई. तो ये कौन है, ये मृत्यु का, ये सबके सिर के अंदर मृत्यु. वही तो बात हुई ना रामायण में कि रावण के मरने के बाद सहस्रमुख रावण, उसको कैसे मारोगे? वो थॉट्स के रूप में सबके अंदर विद्यमान है, सूक्ष्म रूप में सबके अंदर विद्यमान है. तो यहां उसी की बात हो रही है. यह जो कठोर विधान है ये यम का विधान है, यम का पाश है. इसका एक औचित्य रहा, सैंक्शन कहीं ना कहीं मिला, लेकिन ये बहुत कठोर है। एक हद तक समझ आता है कि आप एनिमल लाइफ या उसके पहले, ये विधान ऑपरेट करता है मैकेनिकली, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग्स, उनके अंदर संवेदनाएं जागती हैं, उनके अंदर में भावनाएं जागती हैं, प्रेम जागता है, स्नेह जागता है, इवन हायर एनिमल्स में जागने लगता है, उसके बाद भी वही विधान चलता जा रहा है, तो दिस लॉ मस्ट चेंज। संविधान बदलना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग ग्रो करेंगे तो क्यों नहीं बदलेगा। कोई भी चीज हमेशा रिजिडली वैसी रहेगी, इट शुड नॉट बी, इट शुड इवॉल्व। तो यहां पर उसी का भाव है कि जो हार्श इकोनॉमी है किसकी है, मृत्यु की है, वो किसी को नहीं देखती, अच्छा बुरा कहां स्ट्राइक कर देगी। और ऐसे कई ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिस देख करके, स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुझे याद है एक व्यक्ति था, टेनिस खेलते समय अचानक कोलैप्स्ड एंड डाइड, 50 की एज है। अब आप समझाओ, क्या समझाओ। श्री अरविंद मृणालिनी देवी, जब श्री अरविंद कह रहे हैं कि नाउ यू कैन कम एंड ज्वाइन मी, और देखिए वो रास्ते में ट्रेन में बैठती हैं, उनको मलेरिया बुखार हो जाता है और कलकत्ते में उनका देह पूरा हो जाता है। तो सारे जीवन किसी ना किसी रूप में, ऑफकोर्स श्री अरविंद की भार्या होना तो इस बियॉन्ड एनीथिंग वी कैन इमेजिन, बट स्टिल पीड़ा कष्ट ये सब माँ श्री अरविंद ने अनुभव किया है जीवन में, जैसे हम लोग अनुभव करते हैं। हम लोग मन को समझा लेते हैं कि हमारे कर्म, लेकिन पता नहीं कई बार लगता है कौन से कर्म कुछ तो कहीं फ्लैश हो, और अगर थे भी तो अब तो हम सुधर गए हैं कहीं ना कहीं तो, लेकिन ये कंपाउंड डेट है यहां पर, वो नहीं बढ़ता जाता है। जैसे आपने कंपाउंड डेट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपने उधार लिया किसी से, आपने 10% के हिसाब से किसी ने आपको उधार दिया, देने वाले तो 20% के, अब आपने पे करते करते जो ओरिजिनल है उससे कहीं अधिक दे दिया, दुगना तिगुना दे दिया, इंटरेस्ट दे देखे, लेकिन वो कहते हैं मूल तो अभी तुमने दिया नहीं है। इसको कहते हैं कंपाउंड डेट, जो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, क्योंकि हर बार, अब एक वृत्ति है आपके अंदर टेंडेंसी, हर बार वो वृत्ति आपकी और स्ट्रेंथन होती जा रही है, और स्ट्रेंथन होती जा रही है। लेकिन इन सब का हल है, यही इशू है, और वो ये देखिए, ये अल्टीमेट प्रॉब्लम है मनुष्य की, इम्परफेक्शन ऑफ अर्थली लाइफ, लिमिटेशन ऑफ मैटर, जड़ तत्व सपोर्ट ही नहीं करता है दिव्यता को, ये तो बस निद्रा को सपोर्ट करता है क्योंकि ये जड़ तत्व है, ऑब्सक्योरिटी को सपोर्ट करता है। इसलिए अभी भी देखिए लोग कई बार, अरे इतना कौन सोचिए, इतना कौन करे एफर्ट, ईजी वे आउट, क्योंकि जड़ तत्व का ये स्वभाव है, उसका प्रभाव है मनुष्य के ऊपर कि वो सपोर्ट नहीं करता है दिव्यता की ओर आपकी उड़ान को। समस्या वो है। तो जैसे ही सोल जड़ तत्व में प्रवेश करती, ह्यूमन बॉडी लेती है, तो उसके कर्म अच्छे बुरे अलग बात है, लेकिन वो इस अज्ञान के क्षेत्र में चली जाती है जहां मृत्यु का बोलबाला है, यम का राज चलता है, यम का पाश फैला हुआ है, जहां कहां एक व्यक्ति जा रहा होगा और सर्प डस लेगा, जगह जगह श्री अरविंद की राइटिंग्स में है, और आप कहते रह जाओगे कि भाई पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ, लेकिन वो जड़ तत्व की माताजी बहुत पहले लिखती हैं, इट इज़ अ इम्परफेक्ट, और इसको वो टैकल कर रहे हैं, देखा जाए तो ओरिजिनल प्रॉब्लम। यही हम लोग रुकेंगे। ऑल्टर्ड मस्ट बी नेचर्स हार्श इकोनॉमी, एक्विटेंस शी मस्ट विन फ्रॉम हर पास्ट बॉन्ड, an old account of suffering exhaust, strike out from time the souls, strike out from time the souls long compound debt, and the heavy servitudes of the karmic gods, this slow revenge of unforgiving law and the deep need of universal pain, एंड हार्ड सैक्रिफाइस एंड ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस. Out of a timeless barrier she must break, penetrate with her thinking depths the void's monstrous hush. Thinking depths. अपनी गहराई में भी ये पूरी तरह सचेत हैं सावित्री. तो मृत्यु की गहराई में वो प्रवेश कर सकती हैं सचेतन रूप से. मृत्यु के पास वो बूटी नहीं है कि वो उनको सुला दे, अचेत कर दे. Look into the lonely eyes of immortal death. Paradox देखिए. सबको लील जाती है मृत्यु, लेकिन खुद नहीं मरती. Immortal death. Look into the lonely eyes of immortal death and with her nude spirit मेजर द इनफिनिट्स नाइट. इसीलिए क्योंकि वो इनफिनिट की शैडो है, इसीलिए डेथ ऑफ डेथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. वो सावित्री में अंत में आती है तो माँ कहती है कि ये डेथ क्यों नहीं, इसका इतना बोलबाला क्यों है. अगर आप ओरिजिनल स्टोरी भी पढ़ें मृत्यु कैसे संसार में प्रकट हुई, तो पहला जब व्यक्ति मरता है, ऐसे कहानी है उसके सांकेतिक रूप में, तो तब तक मृत्यु नहीं हुई थी. अब कहते हैं ना पैराडाइज में मृत्यु नहीं, तो जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको अंडरवर्ल्ड का गार्जियन बना दिया जाता है. और पहली बार कि मृत्यु भी हो सकती है, अब क्या होता है ना, वो संभावना के रूप में शुरू हो जाती है. और जितनी मृत्यु होती है उतना अधिक ये दृढ़ होता जाता है. आप देखिए बच्चों को, उनके सबसे बड़ा शॉक उनको लगता है जब वो 10, 11, 12 साल में सडनली कहीं ना कहीं वो मृत्यु की बात सुनते हैं. ऐसा भी होता है. तब तक उनको ये नहीं लगता है कि मेरे पेरेंट्स या इनको कुछ हो सकता है. उनको ये स्पॉन्टेनियस होता है कि हमेशा एक ट्रस्ट है. अचानक वो कन्फ्रंट करते हैं मृत्यु क्या है. बहुत से बच्चे उस समय एक चैलेंजिंग टाइम से गुजरते हैं और फिर वो पेरेंट्स सब लोग नेचुरल जो अभी का विधान है उसमें और दृढ़ करते जाते हैं. और सारे बाबा जी यही दृढ़ करते जाते हैं, सारे शास्त्र यही कहते जाते हैं, जो जन्मा है वो तो मरेगा. तो बस मृत्यु मोटी होती जाती है, ये मां बताती है. आवर फेथ इन डेथ, देखा जाए तो वी हैव मोर फेथ इन डेथ देन ऑन डिवाइन. तो नेचुरली जिस पर हम विश्वास करते हैं वो तो पलती पोसती है. एंड विद हर न्यूड स्पिरिट मेजर द इनफिनिट्स नाइट. अब वो एक लाइन है, इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे. द ग्रेट एंड डोलरस मोमेंट नाउ वाज क्लोज. कौन सा मोमेंट जिसका वर्णन हो रहा है, जब सावित्री को, उस दिन की बात है जब सावित्री को एक साथ पहले मृत्यु से डिबेट होना है, उसके बाद उनको ओरिजिनल बॉर्डर्स ऑफ द अननोन वहां से भी सैंक्शन लेना है, मृत्यु की गुफा से छीन के लाना है जीवन को और साक्षात परमेश्वर से सैंक्शन लेना है कि ये विधान अब बदलना चाहिए. उनके हस्ताक्षर होंगे तब फिर ये विधान बदलेगा. तो ये मनुष्य की रियल इशू है. और देखें तो मूल रूप में यही है जो सारी चीजों का अंडरकरेंट. अधिकतर चीजें हम इसी चीज से ड्रिवेन होकर करते हैं. सफरिंग, मृत्यु, इसे किसी तरह बच जाएं कैसे. इवन जो एथीस्ट है, जो मेटीरियलिस्ट है, वो भी इसी से बचता हुआ भागता है. तो मृत्यु का विधान, यम का विधान बदलना चाहिए. और वो जब तक विधान रहेगा और उस विधान के पीछे जो सैंक्शन है वो भी बदलना चाहिए. और ये काम सावित्री, सत्यवान, अश्वपति यानी श्री माँ श्री अरविंद और हम सब छोटे छोटे सत्यवान इन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है. ये एक नए प्रकार का योग है. 6 माह।